यम आपि अच्युत भाव वार्जिताम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुता पुनाशश्वर भाद्रमीश्वरे न चारपितं कर्म यदाप्य कारणम्। Knowledge of self-realization. Even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. What then is the use of fruitive activities, which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord?
तो आज हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। आत्म साक्षात् का ज्ञान जो है वो भले ही भौतिक आसक्ति से मुक्त क्यों न हो, अगर उसमें भगवान जो कि अच्युत हैं, हरे कृष्ण तो आत्म साक्षात्कार ज्ञान जो है भले ही वो भौतिक आसक्ति से मुक्त क्यों न हो, वो अच्छा नहीं दिखता अगर उसमें भगवान के, जो भगवान अच्युत है, भगवान है, उनके बारे में कोई साक्षात्कार नहीं हो। तो फिर कर्मकांडी क्रिया जो है उसके बारे में क्या कहना, जो कि नैसर्गिक रीति से ही पहले से बहुत ही दुख देने वाली होती है और बहुत ही चपल होती है, जो अगर भगवान की सेवा में उनका इस्तेमाल न किया जाए तो उनका क्या फायदा।
We are reading this evening from the Srimad Bhagavatam.
आज हम ये श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं।
About how to understand and attain the perfection of life.
जीवन का उद्देश्य जो है वो किस प्रकार हासिल किया जा सकता है।
In this chapter, Srila Vedavyas, the author of all the Vedic literatures, is merged in a condition of great lamentation.
वेद व्यास जिन्होंने वेद शास्त्रों के जो रचिता हैं, वो इस अवसर पर बहुत ही उद्वेगकारक स्थिति में फंसे हुए हैं।
वेद व्यास, as the author of the Vedas, was a perfectly God-realized, empowered soul.
वेदों के रचयिता होने के नाते से वो एक पूर्ण भगवत साक्षात्कारी साधु पुरुष है।
He was above and beyond all the dualities of material existence.
भौतिक अवस्था की जो द्वंद्व हैं, उनसे वो पहले से ही आगे निकल चुके थे।
He has already written in the Bhagavad Gita that for such a realized soul situated in the self, He considers happiness, distress, pleasure and pain to be indifferent.
भगवत गीता में उन्होंने खुद लिखा है कि उस स्थिति में ऐसा एक संत पुरुष सुख या दुख या जो भी ऐसे द्वंद्व हैं, उनसे उसे कोई लेना देना नहीं होता।
He sees gold and dirt. That one is no better than the other.
वो मिट्टी और सोना दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है कि एक दूसरे से अच्छा कुछ भी नहीं है।
He is above all the transient conditions of material life, and therefore, as he has explained in the Gita, he has written, "Brahmabhuta prasanatma na shochati na kangshati." He hankers for nothing, nor does he lament for anything. Because he is tasting the eternal sweetness of Brahman.
तो जैसे बताया गया है, वो किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करते या किसी भी चीज के लिए आकांक्षा नहीं करते। वो दोनों से ऊपर आ गए हैं क्योंकि वो ब्रह्म स्थिति पर स्थित हैं।
And whatever Vedavyas wrote in the Gita, in the Upanishads, about detachment and self-satisfaction, he had thoroughly experienced and realized.
निरासक्त स्थिति और ज्ञान के बारे में जो भी उन्होंने उपनिषदों में और अन्य शास्त्रों में लिखा था स्वयं वो उसी स्थिति पर जी रहे थे।
In fact, he was a partial expansion, a Shaktivesh avatar of the Supreme Lord Narayan.
वास्तविक स्थिति में तो वो परमेश्वर नारायण के अवतार थे, एक उनके विस्तार रूप में थे।
But here we find that he is sitting on the banks of the river Saraswati in his ashram, in Badrika ashram, and he is very silently suffering from intense grief.
लेकिन अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि बद्रिक आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर अपने आश्रम में बैठे हुए श्री व्यासदेव जो हैं वो बहुत ही दुखी अवस्था में हैं।
But his suffering is the natural condition of every pure-hearted saintly person.
लेकिन उनकी ये जो दुखी स्थिति है ये कोई भी कोमल हृदय संत पुरुष की एक नैसर्गिक अवस्था है।
Because he was suffering upon seeing how so many fortunate spirit souls who have attained this human form of life were wasting their existence without realizing the highest perfection of life.
उनको दुख इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो देख रहे थे कि इतने भाग्यशाली जीवात्मा जिनको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो मनुष्य शरीर की मनुष्य जीवन की जो उच्च स्थिति है उसको प्राप्त किए बिना ही दुख भोग रहे थे।
दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सो रेयर, इट इज सो प्रेशियस, एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द परफेक्शन ऑफ लाइफ।
मनुष्य जीवन इतना विरल है, इतना दुर्मिल है ये कि इसको बिना प्राप्त किए, इसके जो सिद्ध अवस्था है उसको बिना प्राप्त किए ही वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं।
And there is nothing so sorrowful as seeing such a fortunate human being wasting this valuable opportunity in pursuit of economic development, sense gratification, religiosity, or even liberation.
तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के पीछे भी जो अपने जिसको अपना जीवन का उद्देश्य बनाता है ऐसे जीवात्मा को देखना इससे ज्यादा उनके लिए कोई दुखावह स्थिति नहीं होती।
Today in this world, most of our population of human beings are uncivilized.
तो आज ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो असभ्य ही कहलाने लायक हैं।
Civilized means that one carefully lives by the instructions of the holy scriptures.
जो पवित्र शास्त्र के जो आदेश हैं उनको पालन करना यही सभ्यता मानी जा सकती है।
Today throughout the world, even the governments make laws against the teachings of the scriptures.
आज तो बात ऐसी है कि सरकार है वो भी शास्त्रों के नियमों के खिलाफ अनेक कानून बनाती है।
When the blind lead the blind, they both fall into the ditch of ignorance and bondage.
जब अंधे नेता अंधे अनुयायियों का नेतृत्व करते हैं तो दोनों अज्ञान और भ्रम के गड्ढे में गिर जाते हैं।
And parents who are the natural gurus or spiritual teachers for their children, they have no proper understanding of how to train their children according to the teachings of the scriptures.
जो माता-पिता हैं जो कि कुदरती ढंग से ही अपने बच्चों के गुरु कहलाते हैं उनको भी शास्त्र के अनुसार अपने बच्चों का पालन कैसे किया जाए ये भी पता नहीं है।
They teach their children according to senseless family traditions,
वो अपने बच्चों को जो जिसमें बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है ऐसे अर्थहीन रूढ़ियों पर अपने बच्चों को चलने के लिए सिखाते हैं.
As well as so many acceptable ways of material life that are popular in the society around them.
और जो भी कुछ आजू बाजू के लोगों में जो रूढ़ियाँ चलती हैं उन्हीं के ऊपर बस चलने के लिए कहते हैं.
This is considered uncivilized.
और इसको असभ्य कहा जा सकता है.
But even those who live civilized, which is a small percentage of population, they follow the injunctions of the scriptures for the purpose of a better material life, of a greater degree of sense gratification.
लेकिन जो बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनको कि हम सभ्य कह सकते हैं वो भी शास्त्रों के जो आदेश हैं उनका पालन इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो भौतिक जीवन है वो थोड़ा अधिक सुखावह हो सके.
This is called karma kanda.
इसको कर्म कांड कहते हैं.
Where we worship various devatas.
जिसमें हम अनेक देवताओं की पूजा करते हैं.
Seeking wealth, good husband or wife, rain, freedom from disease and sickness, promotion in our business, good grades in school, and so many other varieties of material progress, up to the point of elevation to the higher planets.
तो इन देवताओं की पूजा हम इसलिए करते हैं कि अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, या पैसा मिलना चाहिए, या हमको स्कूल में अच्छे नंबर मिलने चाहिए, यहाँ तक कि सर्वोच्च इसकी स्थिति के हमको स्वर्गलोक में हमारी उन्नति होनी चाहिए.
आब्रमा भुवनालोक पुनरावर्तनोर्जना मम उपेक्षतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. But from even the highest heavenly planet down to the lowest hell, they are all places of misery because they are all cursed with the ultimate fate of death.
लेकिन सबसे ऊपर के ब्रह्मलोक से लेकर सबसे नीचे वाले पाताल लोक तक ये सभी ग्रह जो हैं उनको ये शाप मिला है कि वहां पर मृत्यु होती है.
So some being frustrated in this way, they take to the path of Ashtanga Yoga, the Ashtanga Marg, in order to attain mystic perfections.
और जो इसको देखकर बहुत ही विफल हो जाते हैं जिनके मन में बहुत वैफल्य आ जाता है वो फिर अष्टांग योग के मार्ग को अपनाते हैं जिससे उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है.
But even the greatest of such yogis ultimately have to fall down to the influences of material temptation.
लेकिन ऐसे श्रेष्ठतम योगी भी भौतिक जो लोभ है उसके चंगुल में फंस जाते हैं.
Because material energy is all powerful.
क्योंकि ये भौतिक शक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान है.
Frustrated, people follow the Vedic scriptures, jnana marg, in order to attain liberation from material suffering.
ऐसे वैफल्यग्रस्त लोग हैं वो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं जो कि वैदिक शास्त्रों में दिया गया है.
But the soul, which is part of Krishna, is hungry for positive, loving relationship with Krishna. Liberation, mukti, can never satisfy the eternal soul.
लेकिन जो जीवात्मा है वो श्री कृष्ण का अंश होने के नाते उनसे एक सीधा और प्रेममयी रिश्ता जो है वो चाहती है. उसको मुक्ति है वो कभी उसको आनंद नहीं दे सकती.
We are part of God. We are Ananda Shakti. We are by nature pleasure seeking. Simply the cessation of pain does not fulfill the true desires or really bring us to the perfection of life.
हम भगवान के अंश हैं, हम उनकी आनंद शक्ति हैं, तो सिर्फ अगर दुखों का मिटना जो है वो हमें आनंद नहीं दे सकता.
So Vedavyas, although he wrote the four Vedas, the Upanishads, the Mahabharata, the Vedanta Sutra, and so many Puranas, he was in distress because he felt that he hadn't really given people direction to the ultimate perfection of life.
तो चार वेद, अनेक पुराण, महाभारत, अनेक उपनिषद, इन सब की रचना करने के बावजूद वेद व्यास जी हैं, वो उनके मन में अभी भी उद्वेग है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अभी भी मैंने लोगों को जीवन की जो अंतिम उपलब्धि है वो प्राप्त करने का मार्ग नहीं बताया है.
So Narada Muni told him that you should write Srimad Bhagavatam. That scripture which exclusively deals with pure unalloyed devotion and love to the supreme truth, Sri Krishna.
तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवतम का भागवतम की रचना करो, जो कि सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जो हैं, उनसे विशुद्ध प्रेम के बारे में निरूपण करती है.
In the Srimad Bhagavatam, Vedavyas has explained. Savai pungshang paro dharmo yato bhaktir rokshajai ahaitiki aprati hataya yatma suprasidati. That the supreme occupation for every human being is that which awakens unconditional love for Krishna.
तो उन्होंने भागवत में बताया है कि मानव के लिए वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है जो कि अहेतुकी, बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम को जागृत करता है.
We must make our goal in life that unconditional love in the service of Sri Krishna.
हमको भी हमारे जीवन का उद्देश्य वही बिना शर्त वाला जो प्रेम है उसी को बनाना चाहिए.
We should not be distracted by any of the illusions of this world.
इस जगत के जो इतर कोई भी भ्रम है, इनसे हमारे मन को हमको विचलित नहीं करना चाहिए.
But this is very difficult because everywhere we go, there are so many distractions.
और ये बहुत कठिन है क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन को यहाँ वहाँ खींच लेती हैं.
And whoever we meet, our family members, our national leaders, our educationists, the whole society is trying to convince us to find pleasure in this world of birth and death.
और जिनसे भी हम मिलते हैं, हमारे राष्ट्र के नेता, हमारे अपने परिवार वाले, हमारे शिक्षक, वो हमको यही सिखाते हैं कि ये जन्म मृत्यु रूपी संसार है, इसी में आपको सुख पाना है.
And even our spiritual leaders are teaching us that enjoy this world and worship God. Or they teach us forget this world and attain mukti or liberation.
यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक नेता हैं, वो भी हमको ये बताते हैं कि इस दुनिया का भोग करो और भगवान की थोड़ी पूजा भी करो. या कोई कहेगा कि इस दुनिया को भूल जाओ और उस मुक्त अवस्था के लिए प्रयत्न करो.
According to Srimad Bhagavatam, for those who are truly seeking the perfection of life, all of these various teachers influencing us are cheating.
लेकिन भागवतम के अनुसार ऐसे सारे शिक्षक जो हमको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वो हमको फंसा रहे हैं.
If you want anything less than unmotivated, uninterrupted love and service to the Lord, you will get something less.
अगर आपको बिना किसी शर्त वाले और बिना किसी रुकावट के विशुद्ध भगवत प्रेम के अलावा और कुछ भी अगर आपके मन में लालसा है तो आपको उससे कम कुछ मिलेगा.
One time, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was engaged in wonderful kirtan in the house of Srivas.
एक बार श्रीवास के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही मधुर कीर्तन कर रहे थे.
And there was a very learned Brahman who was quite well known because he was performing a vow for so many years where he would eat no solid food. But once a day he would just drink a little milk.
और वहां पे एक ब्राह्मण ऐसे थे जिनकी जिनका ये व्रत था कि वो कुछ भी खाते नहीं थे, दिन में एक बार सिर्फ थोड़ा सा दूध पीते थे.
So he was thinking that he was a very highly qualified spiritual person.
और वो अपने आप को एक बहुत ही प्रतिष्ठित आध्यात्मिक व्यक्ति मानते थे.
And he wanted to enter into the holy kirtan of Lord Chaitanya.
और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में वो इसीलिए प्रवेश चाहते थे.
During the days, Lord Chaitanya would have kirtan with everyone, but at nights only with pure lovers of Krishna.
और दिन में चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों के साथ कीर्तन करते थे, लेकिन रात के समय सिर्फ विशुद्ध भगवत भक्तों के साथ उनका कीर्तन होता था.
He was not allowed to come in.
और उस कीर्तन में उस ब्राह्मण को प्रवेश नकारा गया.
And he became very angry.
उनको बहुत गुस्सा आ गया.
He was insulted.
उनका अपमान हो गया.
You cannot insult a humble person.
आप कोई नम्र व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते.
But for a proud man, you can easily insult such a person by acting any way contrary to their own conception of themselves.
लेकिन एक घमंडी आदमी के लिए जैसे उनका अहंकार को ठेस पहुंचती है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है उनको.
So the next day he approached Lord Chaitanya in a mood very angry.
और दूसरे दिन बहुत ही गुस्सा होकर वो चैतन्य महाप्रभु के सामने गए.
He said, "Do you not know who I am? Why you did not allow me?"
उन्होंने कहा, क्या आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? आप मुझे प्रवेश क्यों नहीं देते?
Lord Chaitanya responded that you cannot attain the perfection of life, of love of Krishna, just by drinking milk.
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको श्री कृष्ण का प्रेम सिर्फ थोड़ा सा दूध पीकर कभी नहीं मिल सकता.
So this man became very angry.
तो ये सुनके उसको बड़ा गुस्सा आ गया.
And he took his sacred thread.
उन्होंने अपना जनेऊ अपने हाथ में लिया.
And he pronounced a curse.
और उन्होंने एक शाप दिया.
He said, "I curse you that you will lose all of your material opulence."
उन्होंने कहा कि मैं तुमको शाप देता हूँ, आप अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो बैठेंगे.
And Lord Chaitanya replied, "Hariyo!"
और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरी बोल.
हरियो हरियो. थैंक यू वेरी मच.
उन्होंने कहा, धन्यवाद.
नाउ इफ अ पावरफुल ब्राह्मण वर टू कर्स यू टू लूज ऑल योर मटेरियल ऑपुलेंस, वुड यू से हरियो?
तो अगर कोई बहुत ही प्रतिष्ठित और शक्तिशाली ब्राह्मण आपको ये शाप दे कि आप अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो बैठेंगे, तो क्या आप हरि बोल कहेंगे?
Or would you be struck with fear?
आपके दिल में तो बहुत भय जागृत हो जाएगा.
That means you lose your whole family, you lose your profession, you lose your wealth, you lose all your distinction in society, you lose everything.
तो इसका मतलब है कि आप अपना काम, आप अपना परिवार, समाज में प्रतिष्ठा, पैसा, आपको सबसे हाथ धोना पड़ेगा.
If that curse was on you, would you say, Rio? Or would you say, Oh my God, why me?
तो क्या ये शाप आपको मिलेगा तो आप हरी बोल कहेंगे कि हे भगवान मुझे क्यों ये शाप मिला ऐसे कहेंगे.
How many would be grateful for such a curse? Raise your hand.
आप में से कौन ऐसे हैं जो ऐसे शाप लेकर भी बहुत ही जिनके दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी.
Be honest, please.
ईमानदारी से कहो.
That means even your health may disappear because health is opulence.
तो कोई कहेगा कि आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाए.
How many of you would not like to receive such a curse?
आप में से कितने हैं जिनकी ये इच्छा है कि ऐसा शाप मुझे न मिले तो ही अच्छा है. अपना हाथ ऊपर कीजिए.
The brahmacharis were the first ones to raise their hand. And they have nothing to lose.
जो ब्रह्मचारी हैं उनका तो कोई खोने का सवाल नहीं पैदा होता इसलिए उन्होंने हाथ जल्दी ऊपर कर दिया.
This is the test. Lord Chaitanya, he considered this a blessing.
यही हमारी परीक्षा है. चैतन्य महाप्रभु ने इसे एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया.
And on the basis of this, he used as an excuse to fulfill the words of this Brahman. He took sannyas. He left his wife. He left his home. He left all his wealth to live the life of a simple mendicant, roaming here and there, simply asking everyone to accept the supreme wealth, the supreme opulence of love of Krishna.
और इसके पश्चात इसी ब्राह्मण के शाप को एक कारण बनाकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपना परिवार, सब कुछ को त्याग करके एक सन्यासी के रूप में वो यहाँ वहाँ सिर्फ भटकने लगे और जो भी है जो भी मिला उसको सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए विनंती करने लगे.
When he was traveling through South India, he had nothing but a simple saffron cloth.
तो जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो सिर्फ एक गेरुए रंग का जो सन्यासी वस्त्र है उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था.
And he had a begging bowl for begging food.
और भिक्षा मांगने के लिए एक उनके पास छोटा सा भिक्षा पात्र था.
And he had some beads for chanting Hari Nam.
और हरि नाम जप करने के लिए जपमाला थी.
He had nothing else.
इसके अलावा और कुछ भी नहीं था.
By material standards, he was in complete poverty.
भौतिक दृष्टि से वो एकदम भिखारी के रूप जैसे भिखारी जैसे थे.
But yet, he did not go to South India as a beggar.
लेकिन फिर भी वो दक्षिण भारत में एक भिखारी के रूप में नहीं गए.
He went as a giver.
वो वहाँ पे कुछ देने के लिए गए.
He even approached great kings to give charity. Not to take charity.
यहाँ तक कि वो बड़े बड़े राजाओं के पास भी गए उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उनको कुछ देने के लिए.
The charity he was giving had nothing to do with material opulence, sense gratification, or even liberation.
जिस प्रकार का दान वो दे रहे थे उसका भौतिक समृद्धि ऐश्वर्य या मुक्ति के साथ कुछ भी संबंध नहीं था.
He was giving to everyone without discrimination the opportunity to attain the supreme treasure of love of God.
वो किसी को भी पात्र या अपात्र बिना देखे सभी को वो जो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जो कि भगवान का विशुद्ध प्रेम कहलाता है वो दान दे रहे थे.
कृष्ण प्रेमा अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टिंग लविंग सर्विस टू द सुप्रीम ट्रूथ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड.
वो प्रेम था कृष्ण प्रेम जो अहेतुकी और अप्रतिहता किया जाता है.
And as he was traveling, he was distributing love of God by chanting the holy names.
और जो जहाँ पे जा रहे थे, वो वहाँ पर भगवान का प्रेम जो है, वो हरि नाम के द्वारा बांट रहे थे.
Hundreds, thousands, millions of people, rich, poor, men, women, educated, uneducated, they were all falling at his feet, begging him. To give them the name of Krishna.
और हजारों लाखों करोड़ों स्त्री पुरुष जो कि अमीर गरीब स्त्री पुरुष ऊंच नीच सारे लोग जो हैं वो उनके चरण कमल पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे थे कि उनको वो भगवान का प्रेम दे दे.
He would dance through the roads chanting Krishna 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 Krishna
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 Hare Krishna 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 Rakshama
Krishna 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 Rakshama
Krishna 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 Pahi Maam
Krishna 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 Pahi Maam
Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam
Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava
Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Maam
Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Maam
Krishna 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 Hare
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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama.
Chaitanya Mahaprabhu, he explained that the ultimate perfection of this human form of life is premadana, is to receive the blessed gift of the holy name of Krishna.
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण का जो पवित्र नाम है इस विशुद्ध भेंट को स्वीकार करना.
Because through attentively and sincerely hearing the holy name, it awakens the original natural energy of the soul, which is ecstatic love.
क्योंकि जो भगवान की शक्ति है, ये भगवान की जो भेंट है उसको स्वीकार करने पर हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है.
Other forms of spiritual disciplines and meditations may relieve us of anxieties, help us to become more peaceful, or even achieve liberation from all suffering.
भगवत साक्षात्कार के जो बाकी के पहलू हैं वो शायद हमारे मन को शांत कर सकते हैं या बाकी रूप से थोड़ा हमारा दुख जो है वो हल्का कर सकते हैं.
But the perfection of life is something far greater than that.
लेकिन जीवन का परम उद्देश्य जो है वो इससे बहुत कुछ आगे बढ़कर प्राप्त होता है.
The perfection of life is to realize and experience the infinite beauty and sweetness of the Supreme Truth.
जीवन का उद्देश्य यही है कि परम सत्य का जो परम माधुर्य है और परम आनंद है उसका साक्षात्कार करना.
Who is an all beautiful, all merciful and all lovable divine personality.
और वो परम सत्य वो सबसे सुंदर, सबसे दयालु, सबसे प्रेममयी ऐसे एक व्यक्ति हैं.
Whose eyes see everything and everyone everywhere.
जिनकी आंखें जो हैं वो सभी को सभी अवस्था में सब प्रकार से देख सकती हैं.
Whose ears hear every sound from within and without of every living being.
और जिनके कर्ण जो हैं वो सभी जीवात्माओं के अंतर बाहर जो भी हैं सारे ध्वनि का श्रवण कर सकते हैं.
And whose body is eternal, full of knowledge, full of bliss.
और जिनका शरीर है वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है.
And is the source of everything that exists.
और वो सर्व कारणों के आदि कारण है.
But that divine form of Krishna has only one essential purpose.
लेकिन वो श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है उसका सिर्फ एक ही कारण है.
And that is to reciprocate ecstatic love with each and every one of his parts, with each and every soul.
और उनका एक ही प्रयोजन है कि उनके जो अंश हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना.
To awaken that ecstatic love of God, in which liberation or mukti is an insignificant byproduct, is the purpose by which we chant Krishna's name.
तो हम भगवान के नाम का जाप उसी लिए करते हैं जिससे हमको भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो जागृत हो, और इस प्रेम का एक बहुत ही तुच्छ हिस्सा यानी कि मुक्ति कहलाती है।
The perfection of life is so easy to understand and attain if we simply, with faith and sincerity, accept the sublime teachings of the Srimad Bhagavatam.
तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम अगर सिर्फ श्रीमद् भागवतम के जो आदेश हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो हम अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
In the Bhagavatam there is a story of Vritrasura.
भागवतम में वृत्रासुर की जो लीला है वो कहानी आती है।
He was a great devotee, but he was cursed to become a demon.
वो तो एक महान भक्त थे लेकिन उनको शाप मिला था कि वो एक असुर बन जाएंगे।
And part of his karma as a demon is he had to fight a war with Indra, the king of heaven.
और उस असुर योनि में जन्म लेने के बाद उनके प्रारब्ध में ये भी लिखा था कि इंद्र के साथ उनको युद्ध करना पड़ेगा।
And during this fight it appeared that he was about to defeat Indra.
और उस युद्ध में ऐसे लग रहा था कि शायद वो इंद्रदेव को परास्त करने वाले हैं।
Indra threw his thunderbolt, but it had no effect against Vritrasura. He became so discouraged that he just admitted defeat.
इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर अपना जो वज्रायुध है वो फेंक दिया, लेकिन वज्र भी वृत्रासुर को उसका उसको कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इंद्र ने सीधे हार मान ली।
At that time, Vritrasura began to preach to Indra.
और उस अवस्था में वृत्रासुर जो है वो इंद्र को थोड़ा उपदेश देने लगे।
He said, Indra, you live in Swargaloka.
उन्होंने कहा कि इंद्र आप तो स्वर्गलोक में रहते हैं।
You have your wonderful palaces, your beautiful lady maid servants, your great fame and power.
आपके पास आपका ये सुंदर महल है, अनेक अनेक दास दासियां हैं, बहुत ऐश्वर्य है।
And you are so attached to these things that you are always in anxiety.
और आप इन चीजों से इतने आसक्त हैं कि आपका मन हमेशा उद्वेगपूर्ण होता है।
And you think that everybody is envious of you and wants what you have.
और आप हमेशा ये सोचते हैं कि बाकी सब लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और जो आपके पास है वो पाने की अभिलाषा रखते हैं।
But I don't want anything you have.
लेकिन आपके पास है जो भी कुछ है मुझे उसके लिए बिल्कुल लोभ नहीं है।
And you are so attached to your body. Because through your body, you're trying to enjoy all these facilities.
और आप अपने शरीर से भी इतने आ सकते हैं कि ये सारे जो भोग की वस्तुएं हैं, इनका आप इसी शरीर से भोग कर रहे हो।
But I don't want your wealth. I don't want your prestige. I don't want your position. I want to die.
लेकिन मुझे आपकी संपत्ति, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ।
हरिवो
हरिवो।
Why do I want to die?
तो क्यों मैं मरना चाहता हूँ?
Because I'm always thinking of Krishna.
क्योंकि मैं सदैव श्री कृष्ण के बारे में
I'm self-satisfied.
मैं आत्मा राम हूँ।
I don't need anything of this world. It is all a curse.
मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, ये सब शापित है।
And it is Krishna's plan that you're supposed to kill me, so I will tell you how to kill me.
और ये कृष्ण की योजना है कि मेरा मृत्यु आपके हाथों लिखा गया है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार मुझे मार सकते हो।
If it's Krishna's will that I die, Harivo, I will die in great pleasure.
तो अगर कृष्ण की इच्छा है कि मुझे मरना है तो वैसे ही हो, मैं मरना ही चाहता हूँ।
Because in remembering Krishna one achieves eternal life.
क्योंकि कृष्ण का स्मरण करने से हमको जो शाश्वत जीवन है वो प्राप्त हो जाता है।
For one who remembers Krishna with love, there is no possibility of death approaching him.
जो अत्यंत प्रेम से भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं उनके लिए ये कोई शंका ही नहीं कि मृत्यु उनके समीप आ सकती है।
The body will die. शरीर today or tomorrow.
शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है ही।
A devotee makes no plans for any permanent happiness in this world, but he makes his only plan to always remember Krishna, to always serve Krishna's devotees, and to always receive the gift which awakens that highest consciousness by chanting Krishna's names.
तो श्री कृष्ण का भक्त जो है वो इस दुनिया में सुखी होने के कोई भी शाश्वत योजना नहीं बनाता, वो सिर्फ अपने जीवन में यही चाहता।
Now I am going to go into samadhi thinking of Krishna and you can take your thunderbolt and cut my head off.
तो अभी मैं श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए समाधि अवस्था में जा रहा हूँ और आप अपने वज्र से मेरे इस देह को काट सकते हो।
So we must understand that this goal of life must be our priority in every situation.
तो ये जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है यही हर अवस्था में हमको हमारा लक्ष्य समझना चाहिए।
And we must arrange our life that in every activity, every word, and every thought, we are striving to accept those things which are favorable to attaining life's perfection by using everything in Krishna's service.
और हमको भी हमारे जीवन की रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि जो भी भक्ति के लिए लाभप्रद है उसको स्वीकारना चाहिए।
And by receiving the gift of sadhu satsang and harinam.
और साधु सत्संग और हरिनाम ये दो भेंट जो है उसको स्वीकार करके।
So I would like to invite everyone to now take part in the joyous and most wonderful benediction in all of creation, the congregational chanting of the holy name of Bhagwan.
तो ये दो भेंटों को स्वीकार करके अभी हम आप सबको विनंती करते हैं कि ये जो परम औदार्यपूर्ण भेंट है भगवान के नाम का कीर्तन, उसमें आप सभी जो हैं सम्मिलित हो जाएं।
Would everyone like to chant?
क्या आप सबको जप करने की इच्छा है?
Please raise both your arms if you would like to chant.
अगर आपको इच्छा है तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए।
And say, Hariyo!
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 If you would not like to chant, you could raise one arm.
और अगर आपको इच्छा नहीं है तो एक हाथ ऊपर कर सकते हैं।
And you can say, Oh my God. So I think we will have a wonderful kirtan tonight. Everyone please stand.
सभी लोग कृपया ऊपर खड़े हो जाएं।